अस्सलाम वालेकुम, ये पार्ट नंबर 2 है। आज हम आपके लिए किताब रिकॉर्ड कर रहे हैं, जासूसी दुनिया, जिल्द नंबर 26, नावल 79। चांदनी का धुआं, जिसके मुसनिफ हैं इब्ने सफी। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 2। बस तो तुम आसिफ के साथ जाओगे, लेकिन याद है वो मुझे वापस लाएगा या मैं उसे वापस लाऊंगा। बेतुकी बातें ना करो, वो वैसे ही मुझ पर अपनी सनियाती जिताने की कोशिश करता रहता है। मैं तुम्हें खालिश गदा समझूंगा अगर तुम इसे हैंडल ना कर सके। ये बात है, हमीद आसिम चढ़ाता हुआ बोला। कतई तुम्हारी सलाहियतों का इम्तिहान है, मैं भी मकसूद हूँ। मैं देखूंगा कि मेरी मेहनत किस हद तक बावर आई होती है। बार ही बात आवर ही आवर, देख लीजिएगा इस गैर मुतवक्का टीम पर दिन भर से मकोइयां होती रही। इंस्पेक्टर मिर्जा ने आसिफ को कैंटीन में जा पकड़ा। आसिफ दूसरे चंद इंस्पेक्टरों को इंटरनेट कर रहा था। लेफ्टिनेंट शहीद का ख्याल था आज वो लोग पत्थर में झोंक लगाने में कामयाब हो गए हैं, और आसिफ और कैंटीन इसकी कंजूसी दूर दूर तक मशहूर थी। यार ये कैसे हो गया, मिर्जा ने आसिफ से पूछा। अरे वाह वाह, आओ आओ, तुम कहाँ रह गए थे, आसिफ ने हंसकर कहा। आज ये साहबजादे सहित साहब चाय पिला रहे हैं। चचाओं की मौजूदगी में भतीजे ऐसी जिजारत नहीं करते, सहीद बोला। खैर खैर, देखा जाएगा, आसिफ बेढंगे पन से हंसने लगा। मगर सुनो तो सही, मिर्जा बोला, क्या ये हमीद तुम्हारी सुनेगा? इसके फरिश्ते भी सुनेंगे, आसिफ की आंखें निकल पड़ी। मुझे तो कुछ गड़बड़ मालूम होती है, मिर्जा ने मानखेज अंदाज में अपनी आंखों को गर्दिश दी। आखिर फरीदी ने ये तजवीज क्यों पेश की थी? तुम अक्सर इसे जली कटी सुनाते रहते थे, कहीं तुम्हें सबक ना देना चाहता हो। मर गए देने सबक देने वाले, आसिफ हाथ हिलाकर बोला। कल के लोंडे मुझे सबक देंगे। सबक तो वो पूरे महकमे को देता रहता है, मिर्जा ने कहा। छोड़ो यार खामखा मेरा मूड खराब ना करो, मैं भी इतना समझता हूँ, आसिफ ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि होशियार रहना, कहीं सारे ही सीनियर अफसरों की बेइज्जती ना करवा बैठो। यार बस खत्म करो, आसिफ झंझला गया। वैसे अगर मेरा यहाँ बैठना गरा गुजर रहा हो तो उठ जाऊं। अरे नहीं अरे नहीं, सबों ने बेवक्त कहा, मगर आसिफ का मूड खराब हो चुका था। वो लोग चाय पीते रहे, लेकिन फिर किसी ने इस मसले को नहीं छेड़ा। दूसरी सुबह कैप्टन हमीद रेलवे स्टेशन पर आसिफ का मुंतजर था। आसिफ आया और हमीद से मामूली सी रस्मी गुफ्तगु के बाद ट्रेन का इंतजार करने लगा। हमीद इसकी हमाकत आमेज संदीजी पे दिल ही दिल से हंस रहा था। वो जानता था कि आसिफ खाम वखा बन रहा है, जबरदस्ती खुद पर ऑफिसराना रहब दिलाने की कोशिश कर रहा है। इसकी शक्ल इस वक्त हमीद को बड़ी मायने खैज लग रही थी, मगर वो खामोश ही रहा। इस तरह दुम दबाए इसके पीछे फिरता रहा जैसे ये वक्ती माकैदी के बजाय पेशी गुलामी हो। अचानक उसे कासिम दिखाई दिया, जिसके साथ सामान भी था। ओह, अब हमीद को अपनी गलती का एहसास हुआ। बात यह थी कि टेकम गेट जाने का ही सरकारी प्रोग्राम अचानक बना था और इसने हमीद के निजी प्रोग्राम पर खाक डाल दी थी। आज के लिए कासिम से वादा था कि दोनों एगल बीच के जाएंगे और दो दिन वहां ग्रीन हट में गुजारेंगे, लेकिन पिछली ही शाम इसे कासिम को फोन पे इतला देनी पड़ी, वो एगल बीच ना जा सकेगा। कासिम ने वजह पूछी तो गैर इजहारी तौर पर जबान से निकल गया कि एक सरकारी काम से टेकमगढ़ जाना है। इधर कासिम का ईमान था कि अगर दुनिया में जन्नत के मजे लूटने हों तो हमीद भाई के साथ सफर करो। लिहाजा ये मालूम करके कि हमीद टेकमगढ़ जाने वाला है तो इसकी खोपड़ी की बर्फ पिघलने लगी। हमीद ने इसे देखा और ठटक गया। आसिफ तो हवाओं में उड़ रहा था, इसकी शान के खिलाफ था कि हमीद को रुकते देखकर वो भी रुक जाता। वो प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे की तरफ जा रहा था। पीछे नहीं छोड़ूंगा प्यारे, कासिम उंगली उठाकर हंसा। या ईगल भी या टैंकम गेट, मैं सरकारी काम से जा रहा हूँ, हमीद के लेजे में झंझलाट थी। और मैं गैर सरकारी काम से जा रहा हूँ, ही। तुम मेरे साथ नहीं रह सकोगे। अम्मा क्या मैं तुम्हारी गोद में बैठा जा रहा हूँ, कासिम हाथ उठाकर बोला। कुछ भी हो तुम मुझसे दूरी रहोगे, कितने मील के फासले पर। काशी ने अचमारा अंदाज में पूछा, बेकार की बातें ना करो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसके खिलाफ ना करना। अम्मा कहो जल्दी से, किसी दूसरे कमानुष में बैठना, वरना मेरे साथी को एतराज होगा। अम्मा जाओ, कर्नल साहब तुमसे ज्यादा ख्याल करते हैं, मेरा साथी से मुराद कर्नल नहीं है। फिर कौन है साला? एक दूसरा ऑफिसर। मुझे उल्लू ना बनाओ प्यारे, मैं समझता हूँ। कासिम आंख मारने की कोशिश करता हुआ मुस्कुराया और इसकी शक्ल बेहद मायनेखज हो गई। मेरी बात सुनो, सुनाओ। हमारा सफर एक ही कंपार्टमेंट में नहीं होगा, सेकंड कैट की बात वहीं चलकर तय होगी। अम्मा कोई मुझे लड़की की शादी करना है क्या? नवाब साहब बात तय करने बैठेंगे। कासिम ने जलकर कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, इसने कहा और आगे बढ़ गया। कासिम वहीं खड़ा तरह तरह के मुंह बनाता रहा। हामिद इसी समय जा रहा था जिधर आसिफ गया था। थोड़ी देर चलकर ही इसने जा लिया। ये कौन था जिससे तुम गुफ्तगू कर रहे थे? आसिफ ने पूछा। मेरा एक दोस्त है, क्यों, क्या इसमें कोई हर्ज है? कैप्टन हामिद, तुमसे जो कुछ पूछा जाए सिर्फ इसी का जवाब दिया करो। बहुत बेहतर, हामिद ने इजहार सहादतमंदी के सबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके रवैये पर कभी कभी आसिफ मुहतिर भी रह जाता। ट्रेन आई और एक कमांडेंट में जम गए। कासिम ने भी हामिद के मशवरे से इख्तलाफात नहीं किया था, किसी दूसरे ही कमांडेंट को तरजीह दी थी। ट्रेन रवाना हो गई। हामिद का रवैया सादतमंदाना ही रहा, आसिफ बार बार इसे घूरने लगता। ये आसिफ भी अजीब आदमी था। हामिद की संजीदगी से खुलने लगी थी। दरअसल वो फितरन तुम तो मुझे छेड़ोगे किस्म का आदमी समझा जा सकता था। वो चाहता था कि इसे कोई छेड़े और वो हाथों में पत्थर लिए से दौड़ाता फिरे। आखिर कुछ देर बाद इसे चैन ना पड़ा तो इसने हमीद को मुखातिब किया, क्यों, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बहुत देर से पाइप नहीं पिया। हमीद ने मैसल आवाज में जवाब दिया, क्यों, क्या तम्बाकू खत्म हो गया है? तम्बाकू है, फिर पीते क्यों नहीं? मैंने सोचा मुमकिन है आपको नागवार गुजरे। तेरे ऑफिसर अपने मातहतों को तम्बाकू नोशी पसंद नहीं करते। अरे ये क्या चरगा निकाल बैठे हो, ऑफिसरी और मातहती का? आसिफ हाथ हिलाकर बोला, पियो। शुक्रिया, हमीद ने शहादत मंदाना अंदाज में कहकर पाइप निकाला और इसमें तम्बाकू भरने लगा। तुम कई बार पहले भी टेकमगढ़ जा चुके हो, आसिफ ने कहा। कई बार, बड़ी प्रसन्नता जगह है, आजकल तो जन्नत का नमूना बना हुआ है। वहां से वादी कागान काजकवली सरहदी चौकी कितनी दूर होगी? ज्यादा से ज्यादा 10 मील, लेकिन पहाड़ी इलाकों के 10 मील 1000 मील मालूम होते हैं। मगर हम कायम कहाँ करेंगे भाई, मैं क्या जानू, मैं तो पहली बार इस इलाके की तरफ जा रहा हूँ। मुनासिब यही होगा कि हम टेकमगढ़ में कायम करें, रोजा वहाँ का सबसे शानदार होटल है, वहीं कायम करेंगे। आपको ये सुनकर हैरत होगी, मैनेजर तो मर्द मिलेगा, वरना सारे काम औरतें अंजाम देती हैं। पकाने वाली औरतें, सर्वर करने वाली औरतें या लड़कियां? आसिफ ने होठों पर जबान फेर कर कहा, आपने जो मुझे परेशानी में मुब्तला कर दिया है। क्यों? कसम ले लीजिए, जो आज तक औरत और लड़की का फर्क मेरी समझ में आया हो, बस इन्हें सारी शैतानियों की वजह से तुमसे दूर ही रहने को दिल चाहता है। अगर ये फर्क समझ में ना आए तो इसे शैतानियत कहेंगे? हमीद ने भोलेपन से आसिफ से पूछा। चलो खत्म करो, आसिफ ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। शाहकार, छन छन छन। बराबर वाले कमरे में घुंघरू की झनकार गूंज रही थी। चलानी ने बहुत बुरा सा मुंह बनाकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन चुपचाप बैठा रहा। 1 2 3 4 5, छन 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 छन। दूसरे कमरे में सुफिया नाच रही थी। नाच क्या रही थी? उसे पाव जला रही थी। जलारी ने कहा था वो आज कल सुकून चाहता है। इसकी जहनी हालत इस काबिल नहीं कि वो किसी किस्म का हजान बर्दाश्त कर सके, लेकिन न जाने क्यों वैसे छेड़ती ही रहती थी। इस वक्त भी वो इसे पाव के लिए घुंघरू बांध कर बराबर वाले कमरे में उछलना कूदना शुरू कर दिया था। जलानी थोड़ी देर तक दोनों हाथों से सर थामे बैठा रहा, फिर उठा और दीवानों की तरह दरवाजा पीटने लगा। घुंघरों की झनकार थम गई, दरवाजा झटके के साथ खुला। सूफिया सिर्फ होंठ खोलकर रह गई। इसे जलाने की आंखों से खौफ मालूम हो रहा था। तुम नहीं मारोगी, जलाने घर आया। बड़ी मुसीबत है, इसने खुद पर काबू पाकर कहा। नीचे आंटी जान को आ जाती हैं और ऊपर तुम मौजूद हो, फिर मैं कहां मश करूं? तुम मुझे परेशान करना चाहती हो, जलानी ने आंखें निकाल कर कहा। नहीं कसम ले लो, मैं क्या जानती थी कि तुम मेरा नाचना इतना गरा गुजरेगा, वरना मैं कभी इधर ना आती। जलानी चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर बोला, आओ यहाँ आओ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, मेरा दिमाग पक रहा है। वो छन छन करती हुई इस कमरे में चली आई। बैठ जाओ, जलानी ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। लो बैठ गई, सूफिया बैठती हुई मुस्कुराई। तुम मुझे क्या समझती हो, एक मगरूर मगर अनाड़ी मुसव्विर। तुम्हारे दोनों ही ख्याल गलत हैं। ये भी महज ख्याल है, मैं मगरूर नहीं हूँ, मैं अनाड़ी भी नहीं हूँ। अगर आदमी को खुद ही अपनी खामियों का एहसास हो जाए तो वो इन खामियों को बाकी ही क्यों रहने दे। तुम नहीं समझ सकती, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जलानी ने बेबसी से कहा। क्या समझाना चाहते हो, फक्तन सूफिया की आंखों में चमक सी लहर आई। जलानी कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद इसने कहा, क्या तुम्हारे जहन में कभी धमाके होते हैं? जहन में धमाके? मैं नहीं समझी। तुम धमाके भी नहीं समझती, जलानी जंजला उठा। धमाके तो समझती हूँ, लेकिन जहनी धमाके के लिए एक बिल्कुल नई चीज है। अच्छा, कभी तुम्हारे जहन में बिजली सी गूंजी है? जब मैं हलक तक खाना ठूस लेती हूँ तो आंखें बंद होने लगती हैं और ऐसा महसूस हो जाता है जैसे मैं जहन में बिजलियां गूंज रही हूँ। मेरा मजाक मत उड़ाओ, जलानी ने नाखुशगवार लहजे में कहा। खुदाया, बेचारे आतिफ को कैसे समझाऊं? बस अब जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझे मकान से निकालना चाहते हो। बेतुकी बातें ना करो, मेरी वजह से सबको तकलीफ होती है। खैर, ये मसला तो आंटी की जात के ताल्लुक रखता है। इनसे कहो मेरा सामान सड़क पर फेंकवा दें। आखिर क्यों? मैं शायद कुछ दिनों बाद अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठूं, फिर तकलीफदह हो जाऊंगा तुम लोगों के लिए। लेकिन ज़हनी तवाज़ुन क्यों खो बैठोगे? आखिर किसी डॉक्टर से मशवरा क्यों नहीं करते? वो भी मेरा मजाक उड़ाएगा जब मैं उसे ये बताऊंगा कि मेरे जहन में धमाके से होते हैं और बिजलियां सी गूंजती हैं। आंटी कह रही थी कि तुम्हें कुछ दिनों तक मुकम्मल आराम करना चाहिए। आराम? नहीं, मुझे सिर्फ जहनी सुकून चाहिए। कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ हवा की सरसराहट भी मेरे कानों से ना टकराए। मगर तुम्हें मश्क करनी है, तुम्हें हलक फाड़ना है। खैर, सुबह तुम मुझे यहाँ नहीं देखोगी, शाम तक अपना सामान ले जाऊंगा। यानी सिर्फ इसलिए जाओगे कि मैं? ओह, सूफिया के चेहरे पर हैरत जाहिर होने लगी। इसने कुछ देर बाद कहा, अगर ये बात है तो अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मुझे अफसोस है। वो थोड़ी देर तक खामोश खड़ी रही, फिर जाने के लिए मुड़ी। किसी ने दरवाजे पर दस्तखत दी। ये बेगम तनवीर के अलावा और कौन हो सकता है? आ जाइए, जलानी ने कहा। दरवाजा खुला, मिसेस तनवीर अंदर आई। इनके हाथ में कोई अखबार था और वो बेहद खुश नजर आ रही थी। अरे जलानी, तुम कैसे आदमी हो, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? कुछ बाहर की भी खबर है? इन्होंने सूफिया की तरफ ध्यान दिए बगैर कहा। बाहर क्या हो रहा है, जलानी ने हैरत से कहा। जरा बालकोनी पे जाकर देखो, इनके लहजे से खुशी फूट रही थी। क्या देखूं, बेगम तनवीर ने अखबार इसके सामने फैला दिया। एक मुकामी अखबार का सफा पहले ही सफे पर जली हरफों में तहरीर था, अजीम फनकार जलानी को सलाम। सूफिया भी अखबार पर झुक पड़ी थी। वो बुलंद आवाज में आगे की तहरीर पढ़ने लगी। बैन अलाक्वामी मुसव्वर की नुमाइश का शाहकार, तस्वीर चढ़ाई, जजों की मजलिस मुंतजबा, फैसला चढ़ाई इस साल की बेहतरीन तस्वीर है। ये फैसला मिस्टर जलानी की अदम मौजूदगी में सुनाया गया। हमें इत्तला मिली है कि मिस्टर जलानी इस दौरान एक बार भी नेशनल आर्ट गैलरी में नहीं थे। इसी रात जब मुख्तलिफ अक्वाम बड़े मुसव्वर गैलरी में तस्वीर का इंतखाब कर रहे थे, उस वक्त भी जलानी साहब अपनी तस्वीर के करीब मौजूद नहीं थे। नुमाइश के पहले दिन इस वक्त हमारे नुमाइंदे को इनसे गुफ्तगु करने का इत्तेफाक हुआ। इन्होंने इसे बताया कि वो इस मुकाबले में बहुत बेदिली से शरीक हुए हैं, बस इन्हें जबरदस्ती घसीटा गया था। अपनी तस्वीर के मुकाबले में के बारे में इन्होंने ख्याल जाहिर किया था कि वो यूं ही सही है। इन्होंने इस पर खास तवज्जो नहीं दी। ये जलानी साहब के कसर नफसी थी। अन्ना पहले ही दिन से इनकी तस्वीर के करीब अजा नजर आता था। वाजह रहे कि जलानी साहब ने 3 साल में सिर्फ यही एक इंसानी तस्वीर बनाई। सूफिया खामोश होकर सीधी खड़ी हो गई। वो हैरत अंदाज में पलके झपका रही थी। अब तुम मुझे बताओगे कि मैं लोगों को कहाँ बिठाऊं? बेगम तनवीर ने पूछा। किन लोगों को? प्रेस सपोर्टर और ऑटोग्राफ देने वालों का एक अजीम अंसर बाहर मौजूद है। मेरे खुदा, जलानी ने खौफज़दा आवाज में कहा, मगर मैं तो बीमार हूँ, मुझे भीड़ भाड़ से वहशत होती है। खुदा के लिए इन्हें किसी तरह टाल दीजिए, मेरे बस से बाहर होगा। बेगम तनवीर इसे राना नजर से घूरती हुई बोली। मैं देखती हूँ तुम इस पर खबर का जरा बराबर भी असर नहीं हुआ। क्या तुम्हें पहले से मालूम था? नहीं, जलानी के होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट नजर आई। ये फैसला किस किस्म की जानकारी का नतीजा नहीं? अरे ये मतलब नहीं था मेरा, बस इन्हें किसी तरह टाल दीजिए, मेरा सब चकरा रहा है। बेगम तनवीर की आंखों में तशवीश साफ पड़ी जा सकती थी। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, फिर वापस चली गई। सूफिया अब भी वहीं खड़ी थी। जाओ तुम भी बेगम साहिबा की मदद करो, जिलानी ने इससे कहा। तुम सारी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। सूफिया कलेजा जहरीला था। मैं नहीं समझा तुम क्या कहना चाहती हो, जलानी ने हैरत से कहा। तुम अब तक हजारों आदमियों से यही कह चुके हो कि वो तस्वीर तख्लीकी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सामने कोई मॉडल मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी इसे तख्लीकी नहीं तस्वीर कर सकती। मत करो, जाओ मेरे कान ना खाओ। हाँ मैं दुनिया को धोखा दे रहा हूँ, मेरा क्या बिगाड़ेगा? अगर वो इस साल की शाहकार तस्वीर ना करा पाई होती तो क्या होता? क्या मैं जलानी से जलानी हो जाता? तुम मगरूर और चिड़चिड़े हो, तुम में आर्टिस्टों की सी बात ही नहीं मिलती। मैं लकड़ हारा हूँ, जाओ बोर ना करो। मैं तुम्हें इतना बोर करूंगी कि तुम दीवार से सर टकराते फिरोगे। सच कहता हूँ, तुम मायूसी होगी, जलानी के होठों पर फकती मुस्कुराहट नजर आई। मैं तुम्हारी अदम मौजूदगी में अपने ही हाथों अपना गला घोट सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इससे लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका नहीं दे सकता। मेरी जिद में? क्यों? हाँ तुम्हारी जिद में, जलानी की मुस्कुराहट बरकरार रही। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इस मुस्कुराहट के लिए अपने जहन से जंग करनी पड़ रही हो। आखिर तुम्हें मुझसे क्यों जिद है? सूफिया ने तेज लहजे में पूछा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मालूम हो रहा है जैसे तुमने पिछले जन्म में मेरी मुर्गियाँ चुराई हों। सूफिया को जलानी की संजीदगी से हंसी आ गई। तुम तो वगोन के भी काहिल मालूम नहीं होते, इसने कुछ देर बाद खुशगवार लहजे में कहा। क्यों ना काहिल हूँ, मुझे इससे कौन रोक सकता है? अगर लोगों को मालूम हो जाए कि तुम ऐसी अक्सरदात रखते हो तो आज से इसकी पब्लिसिटी भी शुरू कर दो। हो सकता है इस तरह जलानी से जलानी बन जाऊं, लेकिन ना तो मेरी शक्ल तब्दील होगी, ना मैं छोटा आर्टिस्ट कहलाऊंगा, और ये सब कुछ मेरी जिद में होगा। क्यों सूफिया? आंखें निकाल कर बोली। बिल्कुल, तुम तो ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने ना आया करूं। हाँ मैं यही चाहता हूँ, हत्ता कि मेरी ख्वाहिश तो ये है कि तुम्हारी आवाज भी मेरे कानों में ना पड़ने पाए। तुम मेरी तोहिन कर रहे हो, सूफिया ने झपते हुए कहा। ठीक इसी वक्त बेगम तनवीर दोबारा कमरे में दाखिल हुई। इनके चेहरे पे हवाएं उड़ रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो इस बार कोई बहुत बुरी खबर लाई हो। इन दोनों ने समाई नजरों से इनकी तरफ देखा। इधर बेगम तनवीर जलानी को ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे वो इनके लिए कोई अजनबी हो। क्या बात है आंटी, सूफिया ने सुकुत तोड़ा। ओह, बेगम तनवीर इस तरह चौक पड़ी जैसे उनकी रही हूँ। फिर इन्होंने जलानी से कहा, सब लोग जा चुके हैं लेकिन एक आदमी अभी भी निश्चित के कमरे में मौजूद है। कौन? महकमा सराय रसानी का एक ऑफिसर, कर्नल फरीदी। कर्नल फरीदी? सूफिया की आंखें हैरत से फैल गईं। फिर वो मतबाना अंदाज में हाथ मलती हुई बोली, आंटी यकीन नहीं आता कि कर्नल फरीदी हमारे मकान में। मैं इन्हें देखना चाहती हूँ, मगर आंटी उनका यहाँ क्या काम? यही मैं जलानी से पूछना चाहती हूँ। मैं क्या जानू, जलानी ने मेहताना लहजे में कहा। मैंने इससे भी यही कहा था कि तुम बीमार हो, नीचे नहीं आ सकते। इस पर इसने कहा कि मैं उनसे بستر مرض پر بھی چند سوالات کے جواب حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ مجھ سے کیا پوچھے گا؟ یہ تو وہی بتا سکے گا یا تم جانتے ہوگے. بیگم تنویر نے لہجے میں بے ادباری کی. میں کیا جانوں وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ بھلا محکمہ زراعت رسانی کے کسی آفیسر کو مجھ سے کیا سروکار؟ خیر چلیے میں دیکھتا ہوں. تم جاؤ گے؟ بیگم تنویر نے غصے کے لہجے میں پوچھا. جی ہاں اب تو جانا ہی پڑے گا. پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے. تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ جلانی نے مجھے پریشان نہ کرو. ارے میں اس سے کہہ چکی ہوں کہ آج کل تم پر ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں اور تم بستر سے نہیں اٹھ سکتے. اوہ میں کہہ دوں گا کہ میں نے پریس سپورٹروں سے جان چھڑانے کے لیے کہلوا دیا تھا. نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے. تمہیں بستر پہ لیٹنا پڑے گا اور میں اسے یہیں لاؤں گی. میں پولیس والوں کو دھوکے میں رکھنا اچھا نہیں سمجھتا. میں سرکاری ملازم ہوں. بیگم تنویر پلیز پلیز سے میری غلط بیانی میرے لیے منصف ثابت ہوگی. اگر یہ بات ہے تو میں مردہ تک بن سکتا ہوں. جائیے اسے یہیں لائیے. مگر جلانی بیٹے آخر وہ تم سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ مجھے تو خود اس پر حیرت ہے. دیکھو اگر تم نے کوئی غیر قانونی حرکت کی ہے تو اس کا اثر مجھ پر بھی پڑ سکتا ہے. اپنی دانش میں تو میں نے آج تک کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کی تھی. خیر میں اسے لا رہی ہوں, خدا میرے حال پر رحم کرے. بیگم تنویر چلی گئی اور جلانی بستر پہ آ لیٹا, سینے تک چادر کھینچ لی. مجھ سے تو بتا دو, صوفیہ نے آسکر سے جلانی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل دی. میں قاتل ہوں, اس نے کہا. نہیں, صوفیہ دو چار قدم پیچھے ہٹ گئی. یقین کر لو تم جھوٹے ہو, اس نے زبردستی ہنس کر کہا. ابھی تم دیکھ لو گی, وہ ہتھکڑیاں لگا کر مجھے یہاں سے لے جائے گا. خدا کے لیے بے تکی باتیں نہ کرو, وہ خوفزدہ آواز میں بولی. کیوں تمہیں کیا ہوا؟ بحث نہ کرو, تم جھوٹے ہو. اسی لیے میرے پیر پر مجھے پیر پھانسی کے تختے کی طرف لے جائیں گے. اتنے دنوں میں بہت بچا رہا, جلانی مسکرایا. نہیں نہیں نہیں, وہ پیتاشا اس پر جھک پڑی اور اس کے شانے پکڑ کر جھنجھوڑتی ہوئی روہنتی آواز میں بولی, تم جھوٹے ہو, تم جھوٹے ہو. تم سب کچھ ہو سکتے ہو لیکن قاتل نہیں, ہرگز نہیں. خاموش رہو, شاید وہ آ رہا ہے, جلانی نے کہا اور وہ خاموش ہو کر آنکھیں بند کر لی. صوفیہ میز پر جا ٹکی, اس کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں خود اس پر دل کا دورہ نہ پڑنے لگے. تھوڑی دیر بعد بیگم تنویر اور ایک آدمی کمرے میں داخل ہوئے جس کے چہرے پہ کم سے کم صوفیہ کی نظریں تو نہیں ٹھہر سکتی تھیں. صرف ایک ہی بار وہ دونوں کی نظریں غیر اظہاری طور پر ملی تھیں اور صوفیہ کو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کا سارا جسم جنجلا اٹھا. بہت دنوں پہلے ایک بار اسے ہلکا سا الیکٹرک شاک لگا تھا. اس کی جسم کی جو کیفیت اس وقت ہوئی تھی, موجودہ سچویشن میں اسے کی یاد تازہ کر دی. جلانی نے اٹھنا چاہا. نہیں آپ لیٹے رہیں, کرنل فریدی نے کہا اور صوفیہ کو ایسا لگا جیسے کوئی انہونی بات ہوئی ہو. فریدی کا لہجہ اس کے لیے غیر توقع تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسے خوشوار آدمی کا لہجہ اتنی نرمی نہیں رکھتا ہے. اس نے کرنل کے بہت دل ہرا دینے والے میرے کارنامے سن رکھے تھے. اپنی شاہکار کا تصور پہ مبارکباد قبول فرمائیے, فریدی بیٹھتے ہوئے بولا. شکریہ جناب, جلانی کی آواز میں استعمال تھا. غالباً یہ کوئی ماڈل تھا, فریدی نے کہا. جی نہیں, 100% تخلیقی تصویر ہے, جلانی بولا. صوفیہ نے فریدی کی آنکھوں میں بے اعتباری کی جھلک دیکھی تھی. میں کیسے یقین کر لوں مسٹر جلانی, جبکہ فریدی کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا. جبکہ جلانی استماعی انداز میں مسکرایا. جبکہ میں اس عورت کو اچھی طرح جانتا ہوں, فریدی نے اخبار کی طرف اشارہ کیا. اس اخبار میں جلانی کی شاہکار تصویر چروائی کا عکس شائع ہوا تھا. دن بھر کی تھکی ہوئی چرائی زمین پہ کونیاں ٹکائے نیند دراز قریب ہی چند بھیڑیے چل رہی تھی اور سورج کی دور کی دو پہاڑیوں میں جھک رہا تھا. پتہ نہیں نیم باز آنکھیں اس منظر سے اہم تھیں یا پھر آج کھلے ہونٹوں سے شفاف جھانکنے والے دانتوں میں اس منظر سے اہم ہونے کی صلاحیت موجود تھی. کان میں سگریٹ. نیم گیٹ کا موسم ان دنوں بہت اچھا تھا. سیکم گیٹ کا موسم ان دنوں بہت اچھا تھا. پہاڑی نالے پانی اچھالتے ہوئے بہہ رہے تھے. خود رو پھولوں سے چٹانیں ڈھکی ہوئی تھیں. इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह थी कि इस बार हमीद को फरोजा में करीब करीब सभी मुलाजिम लड़कियां नहीं नजर आईं। सारा अमला बदला हुआ था, ये अब इसकी भी परवाह नहीं रह गई थी कि वो वहां जान पहचान लिया जाएगा। अलबत्ता इसे कासिम की जात से खस्ता लाइक था, वो तो फरोजा के गाहकों को भी याद होगा, अगर किसी पुराने गाहक की नजर पड़ गई तो वो खुद भी पहचान लिया जाएगा। इसी ख्याल के तहत हमीद ने कासिम को मशवरा दिया था कि वो फरोजा में ठहरने के बजाय किसी दूसरे होटल में ठहरे। कासिम पर चूंकि तफरी का भूत सवार था, इसलिए इसने यही मुनासिब समझा कि हमीद के मशवरों पर कान दबाकर अमल करें। हमीद और आसिफ फरोजा ही के में मुकीम थे। यहाँ आसिफ का नाम रजिस्टर में सैयद हासिम दर्ज किया गया था। हमीद इसके सेक्रेटरी की हैसियत रखता था, अगर वो जरा सा भी चौंकते तो इन्हें किसी दूसरे होटल का रुख करना पड़ता, क्योंकि इत्तेफाक से बस एक कमरा खाली रह गया था, वरना मौसम बहार में फरोजा का कोई कमरा सिर्फ इन लोगों को नसीब होता जो 3 या 4 महीने पहले बुकिंग करवाते हैं। जरूरी नहीं था कि इनका कायम सीजन भर के लिए होता, लेकिन फिर भी हमीद ने पूरे कमरे पूरे सीजन के लिए बुक करा लिया। इसके लिए भी इसे क्लर्क को रिश्वत देनी पड़ी। इस वक्त वो दोनों डाइनिंग हॉल में बैठे कॉफी पी रहे थे। आसिफ में सर्व करने वाली लड़कियों को घूर रहा था। फक्तन हमीद ने अपनी मेज पर वेट करने वाली पोजीशन रोशन लड़की से कहा, सेठ साहब के लिए वो चाय। क्या जनाब? वो जिस से दांतों के रेशे निकालते हैं। फलाल जनाब, वही वही। हमीद इसे आंख मारकर मुस्कुराया। आसिफ बदबदा कर लड़की जा चुकी थी। अम्मा तुम अजीब आदमी हो, आसिफ आंखें निकालकर बोला। मैं नहीं समझा, तुमने इसे आंख मारी? हाँ कुछ कुछ याद पड़ता है, हमीद ने कुछ सोचते हुए बोला। ये फर्ज शायद मैंने आपके लिए अंजाम दिया था। क्या मतलब? मैं नहीं समझा था ये लोग हमें बददिमाग समझे। क्या बात! यहाँ इसी तरह अपनाया तो बेतकल्लुफी का इजहार किया जाता है। यहाँ की मुलाजिम लड़कियों किरदार इसी तरह बनता है, जिस तरह लड़की को जितनी ज्यादा आंख मारी जाए वो इतनी ही मकबूल समझी जाती है, और मैनेजर इसका खास ख्याल रखता है। बकवास है, आसिफ हंसता हुआ बोला। मुलाकात होने पर कर्नल से पूछ लीजिएगा, जब हम पहली बार आए थे तो बेचारे को बड़ी दुश्वारियां पेश आई थी। रोज सुबह उठकर मुझसे पूछते थे आंख मारने की शुरुआत किस लड़की से करें। रात भर इन्हें फिक्र रहती थी किसी लड़की को शिकायत का मौका ना मिल सके। ये तो की हाँकते जाओगे तुम, फरीदी को भी नहीं छोड़ोगे? इसने मैं लड़की फलाल ले आई। हमें फिर इसे आंख मारकर बोला, आज मौसम बड़ा खुशगवार है, मगर मुझे अफसोस है जनाब। वो मुस्कुराई। आप तन्हा हैं? तन्हा क्यों? हमीद ने हैरत से कहा। सेठ साहब भी तो हैं। अच्छा, वो किमगिनाती हुई हंसी के साथ रुखसत हो गई। तुम बहुत बेबाक हो, आसिफ मुस्कुराकर बोला। मुझे यकीन है कि तुम लड़कियों के हाथ से पिटते भी होगे। शर्म कई बार हमीद ने संजीदगी से जवाब दिया। शर्म नहीं आती? अगर किसी मूछ वाले से के हाथों पिटता तो जरूर आती। आसिफ के कुछ कहना ही वाला था कि वक्तन माइक्रोन से आवाज आई, खवातीन हजरात आपको आगाह किया जाता है कि सतील घटाई की तरफ ना जाएं, हालांकि वो एक फजा जगह है। अक्सर सियाह वहां के गारों में कई कई दिन गुजारते हैं, लेकिन आजकल घटाई ही मखदूज हो गई है। पहला मौका है जब मौसम बहार में वहां 3 लाशें मिली हैं। गैर मुल्की सियाहों की लाशें जिन्हें शायद लौटाया गया था। आपको बार बार आगाह किया जा रहा है कि सतील घटाई में कदम ना रखिए। किताब जासूसी दुनिया जिल्द नंबर 36 नावल नंबर 79 चांदनी का धुआं का पार्ट 2 इख्तिताम पज़ीर हुआ। तकिया हिस्सा पार्ट 3 में समाप्त फरमाएं।